अरुणिमा हॉस्पिटल के बेड पर अभी भी सुन्न बैठी हुई थी। उसके कानों में पुष्कर जी की बातें अभी भी गूंज रही थीं। उनके शब्द एक एक करके अरुणिमा के दिमाग को इस तरीके से घेर लेते हैं कि अरुणिमा अब कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। पिछले आधे घंटे से वो बेड पर ऐसे ही बैठी हुई थी। उसकी ना तो पलकें झपक रही थी और ना ही वो कुछ रिएक्ट कर रही थी। सांस तो चल रही थी लेकिन वो कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दे रही थी। तभी उसके कानों में कदमों की आहट आई। उसे एहसास हो गया कि आस्तिक वापस कमरे में आ रहा है। वो जल्दी से बेड पर लेट जाती है और अपने आप को चादर से ढक लेती है। कमरे का दरवाज़ा खुलता है और आस्तिक अंदर आता है। उसने देखा अरुणिमा बेड पर लेटी हुई है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। उसके हाथ में एक पैकेट था जो उसने साइड के टेबल पर रखा और धीरे से अरुणिमा के पास में बैठ जाता है। वो अरुणिमा के चेहरे से हल्का सा चादर को खींचकर पीछे की तरफ करता है और अरुणिमा ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं, लेकिन वो सो नहीं रही थी। उसे तब एहसास हो रहा था कि आस्तिक क्या कर रहा है। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के पास में बैठकर उसके सर को सहलाने लगा। अरुणिमा उसके स्पर्श को महसूस कर रही थी। वो आस्तिक की खुशबू को महसूस कर रही थी लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। आस्तिक ने आगे बढ़कर अरुणिमा के माथे को चूम लिया और ठीक से उसके चादर को सही करने लगा। वो अरुणिमा के मासूम से चेहरे को देखकर अपने मन में कहता है, तुम बहुत मासूम हो आरू, और तुम्हारी यही मासूमियत मुझे दुनिया से छुपा के रखती है। मुझे पता है इस वक्त ना तो तुम सोने की हालत में हो और ना ही कुछ समझने की कंडीशन में, लेकिन मैं वादा करता हूँ धीरे धीरे वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी दोबारा प्रेग्नेंट होने की, तो तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी पेरेंट्स बनेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कितना इंतज़ार करना पड़े। मुझे पता है पिछली बार जो मैंने गलती की थी उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, लेकिन इस सज़ा की हकदार तुम नहीं हो। पर जाने अनजाने तुम्हें ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे जुड़ी हुई हो। पर मैं क्या करूँ आरू, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें खुद से अलग कर दिया तो शायद जिंदा नहीं रह पाऊँगा। इसलिए गलती से भी मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना, क्योंकि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। आस्तिक भले ही अरुणिमा से ये सारी बातें अपने मन में कह रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन दोनों के दिल आपस में जुड़े हुए थे, अरुणिमा को एहसास हो रहा था कि आस्तिक क्या सोच रहा है। और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ना तो उसने अपनी आंखें खोली और ना ही उसने आस्तिक को ये एहसास होने दिया कि वो सो नहीं रही है। आस्तिक के जेब में रखा हुआ फोन वाइब्रेट हो रहा था। उसने फोन निकाला तो नीरज की कॉल थी। आस्तिक धीरे से खड़ा होता है और धीरे कदमों से कमरे से बाहर चला जाता है ताकि अरुणिमा की नींद खराब ना हो। और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ अरुणिमा के कानों में पड़ती है, वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आस्तिक के जाने के साथ ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख लिया। वो तड़प कर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी आस्तिक, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ। ये इसलिए नहीं है कि बच्चों के जाने की वजह से मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुम्हें सज़ा देना चाहती हूँ, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुमने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है तुम्हें वो पोजीशन मिल सके। मैंने देखा है सत्ता हासिल करने के लिए तुमने दिन रात मेहनत की है और तुम इन सबको सिर्फ मेरे लिए छोड़ रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ आस्तिक, मैं इतनी ज़रूरी नहीं हूँ जितना तुम्हारे लिए तुम्हारी पोजीशन है। मुझे पता है शुरू शुरू में हम दोनों को तकलीफ़ होगी, लेकिन तुम्हारी अच्छी भविष्य के लिए मैं इस तकलीफ को भी बर्दाश्त कर लूंगी। अरुणिमा ने टेबल पर रखा हुआ वो बैग देखा जो आस्तिक अभी अभी लेकर आया था। अरुणिमा ने देखा उसके अंदर अरुणिमा के पहनने वाले घर के कपड़े हैं। शायद आस्तिक घर गया हुआ था और वहीं से अरुणिमा के लिए कम्फर्टेबल कपड़े लेकर आया है। अरुणिमा ने अपने कपड़े बदले और वो कपड़े पहन लिए जो आस्तिक अभी अभी लेकर आया था। कपड़े बदलने के बाद अरुणिमा ने अस्पताल के कपड़े अस्पताल बास्केट में डाल दिया जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। शाम को अरुणिमा के कमरे में एक अस्पताल स्टाफ आता है और अरुणिमा के कमरे के सारे बेडशीट, चादर और तकिया के कवर को बदल देता है, लेकिन ट्रॉली को उसने कमरे के कोने पर छोड़ दिया था और अरुणिमा ने इस ट्रॉली के अंदर अपने कपड़े डाले और ट्रॉली के नीचे छुपकर बैठ गई। ट्रॉली पूरी तरह से कपड़ों से ढकी हुई थी, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि अरुणिमा अंदर है। अरुणिमा एक ही समय पर घबराई हुई और परेशान दोनों नजर आ रही थी। वो भागने का विचार कर चुकी थी लेकिन वो आस्तिक की नज़रों में नहीं आना चाहती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आस्तिक एक बार फिर से उससे नाराज़ हो जाए, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहती थी। अरुणिमा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आस्तिक के लिए उसका प्यार, उसका लगाव सब उसकी आंखों के सामने आ रहा था। आस्तिक ने जो भी उसके साथ किया था, अरुणिमा ने उन सब के लिए आस्तिक को बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। हाँ, उन दोनों के बीच बच्चों के जाने के बाद जो झगड़ा हुआ था वो उन दोनों के अंदर के गुस्से वाली भावना थी, लेकिन इसमें नफरत कहीं भी शामिल नहीं थी। अरुणिमा बस ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आस्तिक अपने सपनों को कुर्बान कर दे। जाने से पहले उसने एक लेटर लिखा और उसे नाइट स्टैंड पर रख दिया। तब अरुणिमा को ट्रॉली खींचने का आभास होता है। शायद कोई ट्रॉली को खींच रहा था और उसे कमरे से बाहर ले गया। जैसे जैसे ट्रॉली आगे बढ़ रही थी, अरुणिमा का दिल भारी हो रहा था। उसे पहली बार बहुत अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ये उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, तभी नहीं जब उसने देव के साथ अपना रिश्ता खत्म किया था। देव अरुणिमा की जिंदगी में उसका पहला प्यार था। उसने सोचा नहीं था कि देव के जाने के बाद वो कभी भी किसी को अपने दिल में इस तरीके से दाखिल होने देगी कि वो उसके जज्बातों को काबू कर सके। लेकिन आस्तिक जैसे बीस्ट ने प्यार से नहीं बल्कि नफरत से अरुणिमा के दिल पर अपनी हुकूमत की है। देव की जिंदगी से जाने के बाद अरुणिमा इस तरीके से टूट गई थी कि उसने सोचा वो जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं करेगी। लेकिन एक बार फिर से उसका दिल टूटा है और एक बार फिर से वो अपने टूटे हुए दिल का दर्द खुद ही बर्दाश्त कर रही है। वो आखिरी शब्द जो उसने आस्तिक के लिए उस लेटर में लिखे थे, उसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आंसू भी शामिल थे जिसने उस लेटर में छाप छोड़ दी थी। आस्तिक जब वो लेटर पढ़ेगा तो उसमें अरुणिमा के आंसुओं की बूंद भी नजर आएगी। उसने अपनी सभी भावनाओं को उस कागज में लिख दिया था, ये सोचकर कि आस्तिक उसे समझेगा। आखिरकार ट्रॉली रुक जाती है और अरुणिमा पर्दा खोल के बाहर देखती है तो वो हॉस्पिटल लॉन्ड्री में थी, लेकिन यहाँ पर जो स्टाफ था शायद उनकी छुट्टी हो गई थी, इसलिए एक एक करके सारे स्टाफ बाहर निकल गए। सबके जाने के बाद अरुणिमा धीरे से बाहर निकलती है और अस्पताल से बाहर निकलने लगती है। वो एक अनजान सफर पर निकली थी, उसे मंजिल का पता नहीं था और शायद कोई मंजिल थी भी नहीं। वो बस आस्तिक की जिंदगी से बाहर जा रही थी, लेकिन वो अपने माता पिता के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि आस्तिक सबसे पहले वहीं पर अरुणिमा को ढूंढेगा। इसीलिए उसने अनजान रास्ते पर चलने का फैसला किया, एक ऐसा रास्ता जिसकी कोई मंजिल नहीं थी।
लेकिन अरुणिमा अभी भी अस्पताल से निकली नहीं थी, इसका मतलब खतरा उस पर अभी भी है। आस्तिक के आदमी और उसकी सिक्योरिटी अभी भी अस्पताल के आसपास है। अरुणिमा ने एक दुपट्टे से अपने मुंह को ढका हुआ था और वो तेजी से बाहर निकलना चाहती थी। क्योंकि रात का समय था तो लोग भी कम थे और अरुणिमा जल्दी से नजर में आ सकती थी, इसीलिए वो इतनी तेजी से बाहर निकल रही थी कि उसका ध्यान नहीं था। पर तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो गिरती उससे पहले ही सामने से किसी ने उसे संभाल लिया, लेकिन शायद उसके हाथों में फोन था जो जमीन पर गिर गया और स्पीकर से किसी आदमी की आवाज आ रही थी। अरुणिमा ने जब वो आवाज सुनी तो उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई और वो चेहरा उठाकर सामने देखती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। मीरा,